हिंदी समीक्षा में छायावाद शब्द बहुत बार एक दुर्वचन के रूप में प्रयुक्त होता दिखता है। भावुकता, कल्पना विलास, यथार्थ से अलगाव और जिसे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में मधुचर्य कहा, इन विविध मनस्थितियों को वर्णित करने के लिए एक झोला शब्द छायावाद चल जाता है। यह परिस्थिति जहाँ अति सरलीकरण से उत्पन्न हुई है, वहीं अनेक विभ्रमों को उपजाती है। छायावाद के समतुल्य अंग्रेजी में रोमांटिक शब्द भी कभी कभी हल्के तिरस्कार के भाव को लपेटे रहता है, जबकि सेंटिमेंटल शब्द का प्रयोग तो निश्चित रूप से खिल्ली उड़ाने के लिए होता है। पर इस तरह के दोनों अंग्रेजी प्रयोग सामान्य बोलचाल के क्षेत्र में ही अधिक चलते हैं। साहित्यिक संदर्भों में रोमांटिक शब्द अपने पूरे भाव गंभीर के साथ प्रयुक्त होता है। हिंदी में छायावाद शब्द इस तुलना में परवर्ती युग में अवमूल्य दिखता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है, संदर्भ निराला की कविता तोड़ती पत्थर का है, विश्लेषण एक नए कवि समीक्षक द्वारा, ये सारे शब्द बंध छायावादी हैं और गाढ़े के कुर्ते में चमकते हुए रेशमी पैबंध से लगते हैं, जो सौंदर्य को बढ़ाते रहें उसका खुरदरापन भंग करते हैं। समीक्षा के एक नए रूप में जो मुख्यतः नई कविता और वामपक्षी विचारधारा के मिले जुले संदर्भों से विकसित हुआ है, छायावादी शब्द का यह प्रतिनिधि प्रयोग कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल के बाद छायावादी काव्य की जो समझ मुख्यतः नंद दुलारे वाजपेयी के माध्यम से विकसित हुई थी, वह फिर परवर्ती काव्य आंदोलनों के उत्साह अतिरेक में क्रमशः मंद पड़ गई। स्पष्ट ही यहाँ एक प्रश्न विशेष शब्द के प्रयोग का नहीं है, मुख्य बात है ऐतिहासिक विकास क्रम में उस प्रयोग में द्योतित रचना धारा के प्रति दृष्टिकोण की। साहित्य के इतिहास में किसी भी रचना धारा के लिए कोई नामकरण कभी पूरे तौर पर दोषप्रद नहीं हो सकता, छायावाद भी नहीं है। पर यह देखना यह है कि नामकरण के प्रति असंतोष रचना धारा ही के प्रति पूर्वग्रह न बना दे। यह सचमुच एक विचित्र स्थिति है कि साधारण ढंग से छायावाद कहने पर चांदनी रात, नौका विहार, जूहे की कली आदि से संबद्ध कविताओं की याद अधिक दिलाई जाती है। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। छायावाद का यह मनश्चित्र बनाने में कुछ उस युग के समीक्षकों और इतिहासकारों का योगदान है जो छायावाद का मूलतः प्रकृति संबंधी काव्य मानना चाहते थे। प्रकृति काव्य के प्रेमी होने के कारण स्वयं रामचंद्र शुक्ल इसी धारणा के निकट थे। उनका आग्रह तो यहाँ तक था कि प्रकृति को ही सर्वतः आलंबन मानकर कविता लिखी जा सकती है, लिखी जानी चाहिए। मानव उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से उन्होंने स्वयं एक लंबी कविता सवैया जैसे छंदों में लिखी थी। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहां। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी कवि चतुष्टय में से सुमित्रानंदन पंत के काव्य के प्रति विशेष रुझान का एक कारण भी आचार्य शुक्ल के मन का या प्रकृति प्रेम और उसके प्रति उत्साह है। यह ठीक है कि छायावादी कवियों के आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक किशोर सम्मोहन भाव दिखता है, पर धीरे धीरे इस प्रकृति का स्थान मानवीय जीवन और उसकी विविध जटिल भावभूमियाँ ले लेती हैं। जब सुमित्रानंदन पंत ने शुरू शुरू में लिखा था, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूलोचन, भूल अभी से इस जग को। तब शायद उनके जग में प्रकृति का ही विशेष महत्व था और यथार्थ की समझ के प्रयत्न में प्रकृति को बात दिए जाने भी उनकी तथा अन्य छायावादी कवियों की कविताओं में मनुष्य और उसके सामाजिक परिवेश का तनाव क्रमशः केंद्र में आता जाता है। विडम्बना इस बात की है कि स्वयं इन कवियों की विश्व दृष्टि जहाँ जटिलतर और समृद्धतर होती गई है, वहाँ इन कवियों के काव्य का जो मनश्चित्र हिंदी पाठकों और समीक्षकों की पहली पीढ़ी में बना था, वह हमारे साहित्यिक वातावरण में भी परिव्याप्त है। प्रकृति काव्य और छायावादी काव्य में विभ्रम उत्पन्न होने की संभावना है, इस बात को जयशंकर प्रसाद ने समझा था। अपने निबंध यथार्थ और छायावाद का समापन करते हुए उन्होंने लिखा, प्रकृति विश्वात्मा की छाया का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है, यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात में नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। इतनी खरी चेतावनी के संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है कि रचनात्मक स्तर पर प्रकृति का सीमित उपयोग ही छायावादी कवियों ने किया है। यह बात कहने पर कुछ अटपटी सी लग सकती है कि हिंदी में छायावाद का मनुष्य चित्र बनाने में एक बड़ा योग रविंद्रनाथ ठाकुर, विशेषतः उनकी गीतांजलि का है, क्योंकि आरंभिक काल में यह मानकर चला जाता था कि हिंदी का छायावादी काव्य बंगला के अनुकरण पर है। अतः गीतांजलि में जैसा प्रकृति चित्रण मानवीय प्रेम और अध्यात्म का संश्लेषण था, वैसा ही काव्यात्मक वातावरण छायावाद का मान लिया गया। हिंदी पाठक की यह वैचित्र दीक्षा थी कि गीतांजलि पढ़ने पर उसे जैसी अनुभूति होती है वैसी अनुभूति वह अनिवार्यतः छायावादी आस्वादन के साथ जोड़ लेता था। पुनर्जागरण काल से बंगाल का प्रभाव मध्य देशी जीवन पर रहा है। साधारण आचार व्यवहार से लेकर साहित्यिक रचना कर्म के लिए मध्य देश को बहुत बार आदर्श बंगाल से मिलता था। यह तत्कालीन संस्कृति के प्रवाह की दिशा थी। भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्वाभाविक था, क्योंकि 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का नेतृत्व बंगाल ने किया था। रामचंद्र शुक्ल युगीन प्रवृत्तियों के अनुकूल कई बंगला उपन्यासों का अनुवाद करने के बावजूद हिंदी में इस बंगला संपर्क से बहुत खिन्न और खीजे रहते हैं। काव्य में रहस्यवाद शीर्षक लंबे निबंध में उनकी यह प्रक्रिया जगह जगह व्यक्त होती है। यह नकल जैसे सब नकलें बाद बंगला से शुरू हुई, अतः हिंदी वालों में कुछ बेचारे तो बंग पदावली के अवतरण से ही संतुष्ट रहते हैं, और कुछ जिन्हें अंग्रेजी का भी थोड़ा बहुत परिचय रहता है सीधे अंग्रेजी से, जहाँ से बंगाली लेते हैं लाक्षणिक पदावली उठाया करते हैं। बुद्धि को रुग्ण करने वाली, पाखंड का प्रचार करने वाली यह हवा अंग्रेजी से बंगला में और बंगला से हिंदी में आई। बंगला के प्रति आचार्य शुक्ल का यह क्रोध कुछ अतिरंजित ही लगता है। जरूरत इस बात की है कि बंगला के अंधानुकरण प्रसंग को परे रखकर उसके निर्मायक प्रभाव को समझने का प्रयत्न किया जाए। निराला का काव्य व्यक्तित्व मनोविश्लेषण के स्तर पर एक गुत्थी है, इसका कोई समाधान नहीं होता। यदि उसमें से बंगाल के संपर्क को बाद कर दिया जाए, निराला बैसवाड़े के ग्रामीण परिवार के थे। पिता सामान्य सिपाही दरबान, शिक्षा कुछ हुई नहीं, हिंदी भाषा के जीवित संपर्क से अलग रहे, फिर उनके काव्य में यह रचनात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है। 1927 में वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद को अपने गांव गढ़ाकोला से एक पत्र में निराला लिखते हैं, आप मुझे लिफाफे में पत्र लिखने पर अपना एक सादा लेटर पेपर साथ ही रख दिया कीजिए, यहाँ कागज का बड़ा अभाव रहता है, वज्र देहात है। यह स्थिति ठेठ हिंदी के उस इलाके की है जहाँ सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और आधुनिक काल के बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और पालन पोषण हुआ है, और उस कवि की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है जिसे राम की शक्ति पूजा लिखनी है। तब विदेहवादी दृष्टिकोण का समर्थन न करते हुए भी दिखता है कि बैसवाड़े के संस्कारों को परिष्कार कलकत्ता से टकराहट में मिला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बंगला का यह रचनात्मक संपर्क आधुनिक काल में भारतेंदु के समय से ही दिखाई देने लगता है। भारतेंदु हरिश्चंद नामक अपने ग्रंथ में भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र की कृतियों में से प्रेम तरंग का ब्यौरा देते हुए ब्रजरत्न दास लिखते हैं, ग्रंथकर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चंद्र उपनाम गिरधर दास जी तथा भारतेंदु हरिश्चंद का नाम दिया है। इसमें 64 पृष्ठ और 361 पद हैं। इसमें बाबू गिरधर दास के 23, बाबू हरिश्चंद्र के 204 और 44 चंद्रिका उपनाम के हैं, अंतिम 34 बंगला के हैं। प्रेम तरंग के वर्तमान रूप में पहली संरचनाएँ हरिश्चंद्र की हैं, ब्रजभाषा पद और कुछ खड़ी बोली नज्म, फिर बंगला गान है, संख्या में 46 जो अधिकतर चंद्रिका उपनाम के हैं, कुछ में हरिश्चंद्र की भी छाप है, और अंत में रसा उपनाम से भारतेंदु की 2 उर्दू गजल है। चंद्रिका के बारे में बताया जाता है कि वे भारतेंदु की बंगालिन मित्र थी। हिंदी आलोचना में पिछले कुछ समय से इस बात का विशेष बल दिया गया है कि हिंदी नवजागरण का संबंध बंगाल के पुनर्जागरण से नहीं बल्कि 1857 के सिपाही विद्रोह से है। अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा ने इस दृष्टिकोण को बलपूर्वक स्थापित करना चाहा है। उनके अनुसार सिपाही विद्रोह हिंदी क्षेत्रीय पुनर्जागरण की पहली मंजिल है। पुनर्जागरण की सांस्कृतिक प्रक्रिया के इस पक्ष का विश्लेषण करते समय महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि तदयुगीन हिंदी साहित्य विशेषतः भारतेंदु का दृष्टिकोण सिपाही विद्रोह को लेकर क्या रहा है। अंग्रेजी राज के प्रति भारतेंदु का भाव कुल मिलाकर अविकर्षक रहा है, आकर्षण और विकर्षण दोनों के साथ साथ। वे अंग्रेज शासन को अंधेर गर्दी का जैसे खुलकर वर्णन करते हैं, वैसे ही आत्मीयता के साथ महारानी विक्टोरिया की कल्याण कामना करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति वे आकृष्ट होते हैं, पर अंग्रेजी शासन के प्रति भय और आशंका की मिलीजुली मुद्रा में। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाय सकत कहु भारतवासी, विजयिनी विजय भजयंती। यहाँ कवि द्वारा प्रयुक्त द्रोह के लिए अनल तथा उसके नाशकर्ता के लिए जल के बिंब भी किसी सीमा तक उसके रूप को स्पष्ट करते हैं। इस तुलना में बंगाल की सांस्कृतिक सजगता के प्रति जैसा दिखाया जा चुका है, भारतेंदु का कोई संदर्भों में गहरा लगाव रहा है। तथ्य और व्याख्या में तालमेल न रहने पर इस उक्त के चरित्र को होने की संभावना बराबर रहेगी कि घटित हुई घटनाओं का बदलना तो ईश्वर के ही बस की बात नहीं, इसके लिए उसे इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ता है। मध्य देश की राजनीतिक जागरूकता और बंगाल के सांस्कृतिक प्रक्रिया के अंतर और संबंध को समझकर जब भारतीय पुनर्जागरण की व्याख्या की जाएगी, तब आचार्य शुक्ल की शब्दावली में ठीक ठिकाने की होगी। भारतेंदु ने बंगला में लिखा और वहां से कई तरह के अनुवाद किए। मैथिली शरण गुप्त ने प्रख्यात आधुनिक बंगला कवि माइकल मधुसूदन की कई रचनाओं का पद्यानुवाद किया। निराला में बंगला का संस्कार कई रूपों में आया तो उसका एक स्पष्ट कारण यह भी था कि बंगला उनके लिए आरंभ में प्रथम भाषा की तरह रही। अज्ञेय ने बंगला काव्य का रचनात्मक उपयोग अपने साहित्य में जगह जगह किया और रविंद्र तथा शरद के अनुवाद भी किए। यों आधुनिक काल के एकदम आरंभ से आधुनिक रचनाकार अज्ञेय तक बंगाल का संपर्क हिंदी के लिए फलप्रद रहा है। इस समूची अवधि में बंगला के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहकर लिखने वाले बड़े हिंदी लेखक जयशंकर प्रसाद रहे हैं। प्रसाद का रचनात्मक व्यक्तित्व यहाँ कई रूपों में खांटी और निष्प्रिय कहा जा सकता है। बंगला और अंग्रेजी प्रभाव से प्रायः निरपेक्ष रहकर वे अपने रचना कर्म में संलग्न रहे, पर निराला का योगदान अपने ढंग से कम महत्वपूर्ण नहीं रहा। पुनर्जागरण के बंगला मनीषी रामकृष्ण देव, विवेकानंद और रविंद्रनाथ से प्रेरणा लेकर निराला साहित्यिक रचनात्मक ऊर्जा में अपनी गुरु परंपरा से आगे बढ़ जाते हैं। दुर्गा पूजा के देश बंगाल में शक्ति आराधना पर वैसी ऊर्जास्विन रचना नहीं लिखी गई जैसी राम की शक्ति पूजा है। शक्ति का मंत्र निराला को और सुमित्रानंदन पंत को बंगाल से मिला, पर शक्ति काव्य मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश में इन छायावादी कवियों ने रचा। कामायनी तुलसीदास राम की शक्ति पूजा में शक्ति और मानवीय चेतना का जैसा आख्यान है, वैसा बंगला काव्य या स्वयं रविंद्रनाथ में नहीं मिलता। बंगाल की सुकुमार कल्पना और सूक्ष्म प्रतिभा मध्य देशी पौरुष के संपर्क में तथा ब्रजभाषा के विरोध में उठ खड़ी हुई खड़ी बोली की खड़खड़ाहट बंगला भाषा की कोमलता के संस्पर्श से शक्ति और दीप्ति का संश्लेष बन गई। बंगाल से जो कुछ निराला ने लिया उसमें बहुत कुछ जोड़कर जैसे उन्होंने अपने गुरु ऋण को पूरा किया, इसीलिए रविंद्रनाथ का काव्य गीतांजलि जिस वातावरण का निर्माण करते हैं वह हिंदी के छायावादी काव्य संसार का एक अंश मात्र है। उसके केंद्र में तो शक्ति चेतना का वह उत्स है जिसने भारतीय पुनर्जागरण को परिचालित किया था और जो फिर क्रमशः साहित्य के सूक्ष्म स्तरों पर उन्मुक्त हुआ। रविंद्रनाथ में प्रकृति और राष्ट्रीयता के विविध रूप हैं, श्रृंगार और आध्यात्म का सूक्ष्म चित्रण है, प्रार्थना की गहराई है, पर शक्ति काव्य का वह रूप नहीं जो प्रसाद या निराला में मिलता है। इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कम आयनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है। उसके वर्तमान संकट की समझ है और उस संकट से बचाव की संभाव्य दिशा सांकेतिक है। थके और पराजित मनु के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में करती है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हो नुरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजय नि मानवता हो जाए। यह मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है और संदर्भ राष्ट्रीय होते भी चिंता समस्त मानवता की है। इसी के समानांतर स्थिति निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में है। रावण के पक्ष में शक्ति आ गई है। राम यह जान समझ कर स्तब्ध और हताश है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल। प्रसाद के मनु और निराला के राम के हतेशा मन स्थिति बहुत कुछ मिलती जुलती है। मनुष्य मात्र के जीवन में कभी न कभी ऐसी मन स्थिति आती है जब उसके मुंह से निकल पड़ता है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। पर मनुष्य का साहस और सर्जन क्षमता उसका अतिक्रमण भी करती है। जहाँ भगवान राम को परामर्श देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, संपूर्ण कविता की रचना दृष्टि यहीं से आलोकित और प्रवाहित होती है। शक्ति की कल्पना अनुकरण में संभव नहीं, शक्ति को सदा मौलिक रूप में ही परिकल्पित किया जा सकता है। शताब्दियों से पराधीन देश को इससे बड़ी और सार्थक दृष्टि कोई नहीं दे सकता। जहाँ राम जितने अपने लिए हैं उतने ही सामूहिक राष्ट्रीय मन के प्रतीक और उतने ही स्वयं कवि व्यक्तित्व के, ये कई अर्थ स्तर पर एक दूसरे से टकरा कर मानवीय आत्मशक्ति का विराट आख्यान प्रस्तुत करते हैं। कविता का अंत होता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति की राम के वदन में होई लीन। महाशक्ति का राम के वदन में लीन हो जाना आत्मशक्ति के विकास की व्यंजना देता है। शक्ति अपने से बाहर कहीं नहीं, अपने ही अंदर है, केवल उसे जागृत और विकसित करना है, और यह प्रक्रिया अपने में मौलिक है, विशिष्ट है। इसी संदर्भ में शक्ति की मौलिक कल्पना करने में क्षम राम को संबोधित करते हुए उन्हें नवीन पुरुषोत्तम कहा गया है। श्रद्धा सर की अंतिम पंक्तियों में शक्ति और विजय का जो संदेश है, विजय नि मानवता हो जाए, वह यहाँ दूसरे कथावृत्त के बीच से फूटता है। शक्ति साधना का मूल स्वर एक है और यही स्वर एक अपेक्षा विस्तृत फलक पर निराला के तुलसीदास में मुखरित होता है। तुलसीदास काव्य कवि तुलसी की रचना प्रक्रिया गतिशील होते हुए अंकित करता है और रचना शक्ति के विमुक्त होने में राष्ट्रीय जीवन के सांस्कृतिक संदर्भों और कवि के वैयक्तिक प्रणय की अंतर क्रिया को सूक्ष्म स्तरों पर आलोकित करता है। रत्नावली के जन प्रचलित कथानक को लेकर निराला ने कवि के मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा सृजनात्मक पक्षों को एक संश्लिष्ट रूप में उभारा है। काव्य के अंतिम अंश में तुलसी को अपनी प्रिया का व्यक्तित्व देवी भारती में रूपांतरित होते दिखता है। उनकी आरंभिक सांस्कृतिक चिंता और पत्नी के प्रति एकांत प्रणय भाव जैसे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। उनके हृदय में एक नया स्वर उठता है जो असुर भावों से भुने प्रदेश में सर्वत्र गूंज उठता है। उस स्वर क्रम का एक छंद इस प्रकार है, होगा फिर से दुर्धर्ष समर जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर। भरती उधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। संस्कृतियों और विचारधाराओं का संघर्षियों निराला द्वारा चित्रित तुलसी के रामचरितमानस का प्रमुख उपजीव्य बनता है। भारती इधर है उधर सकल जड़ जीवन के संचित कौशल, यह संघर्ष निराला का तुलसीदास का है, स्वयं अपने कवि कर्म में निराला का है, जिसे वे राम की शक्ति पूजा में राम के माध्यम से अंकित करते हैं। इस तरह एक ही रचना में कई स्तरों पर यह जीवन मूल्यों और पक्षों का संघर्ष चित्रित हुआ है। जिसे शक्ति पूजा के आरंभ में कवि ने कुछ नाटकीय मुद्रा में राम रावण का पराजय समर कहा है। कामायनी की तो मूल वस्तु यही है देव असुर और मानव संस्कृतियों के टकराव है। पहले देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष है जिसका चित्रण प्रधानतः ईड़ा सर्ग में हुआ है। फिर देव और असुरों की साझी संस्कृति से टकरा कर नई मानवीय संस्कृति विकसित होती है जो नश्वर है पर अपनी नश्वरता में ही सृजनात्मक बनती है और प्रेम की नई अभूतपूर्व क्षमता को विकसित करती है। आधुनिक युग के पुनर्जागरण में यह सांस्कृतिक संघर्ष की वस्तु अर्थ के स्तर पर और संचरणशील हो जाती है। अब टकराहट भारतीय और पाश्चात्य धाराओं के बीच है। इस सारे संघर्ष में मौलिक रचना शक्ति की जय भारती और दुर्गा जिसके प्रतीक अधिष्ठाते हैं कवि के आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास और कामायनी में ही नहीं प्रसाद के आंसू में भी जिसे छायावादी परिदृश्य के अंतर्गत विरह काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है सामान्य द्वंद्व और संघर्ष को अतिक्रमित कर जाने की प्रक्रिया अंकित हुई है। कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है वह कुछ वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। इसीलिए वेदना को कवि ने कहा है जग द्वंद्वों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला। आंसू के अंतिम अंशों में पहुंचकर कवि का विरह भाव सार्वभौम वेदना में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ कवि का अनुभव इतना सघन हो जाता है कि उसे प्रकृति में और मानवता में जहाँ कहीं पीड़ा दिखती है वह उसे अपनी वेदना का ही रूप लगती है। यह वेदना का अद्वैत है। इन सारी पीड़ाओं के तत्व में उसे रचना की उपलब्धि होती है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। आंसू की सघन वेदना में से निराशा का स्वर नहीं उपजता उसमें से विराट रचना आस्था फूटती है। वेदना के आलोक का सर्वव्यापी प्रसार महादेव वर्मा ने एक दूसरे स्तर पर आत्मीयता से चित्रित किया है। सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला। छायावाद के विशिष्ट काव्यों और लंबी कविताओं के अतिरिक्त छोटे गीतों और स्फुट कविताओं में भी मूलतः पुनर्जागरण की चेतना अंतर्व्याप्त दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात यहाँ है ऐहिक जीवन और शरीर का महत्व। इसे मध्यकालीन संतों और कवियों ने पानी का बुलबुला और काग गीध का भोजन कहा था। ऐहिकता में यह आस्था आगे मानवीय आत्मविश्वास का आधार बनती है। इस एक बिंदु पर समूची मध्यकालीन हिंदी मानसिकता का जैसे कायाकल्प हो गया हो। संन्यास वैराग्य तपस्या और परलोकवाद में आस्था जैसे मूल्यों के स्थान पर जब ऐहिक जीवन इहलोक और मानव शरीर के आकर्षण का महत्व प्रतिपादित होता है। निष्काम कर्म की जगह प्रसाद की कामायनी में कर्म और भोग के सामंजस्य का गुणगान हुआ है। कबीर सूर जायसी तुलसी भक्तिकाल के अंतर्गत संसार का निषेध करके परम तत्व की ओर मन को ले जाने का उपक्रम करते हैं। छायावाद के कवि इस संसार को पूरी तरह साकार से भरे परम तत्व से अभिन्न देखते हैं। हिंदी मानसिकता के विश्व दृष्टि पुनर्जागरण के संक्रमण में जैसे पूरी तरह घूम गई हो तब यह स्वाभाविक है कि भक्तिकालीन कवियों जैसा बड़ा व्यक्तित्व छायावादी कवियों का भी हो। सुमित्रानंदन पंत अपनी कृतज्ञता शीर्षक कविता में जो छायावाद के मुख्य काल के बाद 1956 में लिखी गई है मानव शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु धोने में तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। देह के धोने में आत्मा का पावक धारण करने का बिंब मानव शरीर की क्षमता को पूरी तरह प्रमाणित करता है। कामायनी के श्रद्धा स्वर्ग में ऐहिक जीवन में इसी आस्था और श्रद्धा का आख्यान प्रसाद ने किया है। काम मंगल से मंडित श्री स्वर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो सकल भवधाम असफल भवधाम। हमारी संस्कृति में शरीर और संसार की महत्ता एक बार फिर से स्थापित करने में छायावाद का योगदान केंद्रीय है जबकि सामान्यतः उसे अतीन्द्रिय अनुभव और कल्पना लोक से जुड़ा हुआ समझा जाता रहा है। हिंदी आलोचना की दिलचस्प गढ़लिकाओं में से एक यह है। वस्तुस्थिति है कि मध्यकालीन कवि के लिए संसार पछड़ा था। आधुनिक युग का छायावादी कवि संसार में आनंद की संभावना देखता है। प्रसाद के प्रबंध काव्य कामायनी और पंत की संक्षिप्त कविता कृतज्ञता दोनों में संसार और देह के प्रति क्रमशः चिंता और कृतज्ञता की भावना से आरंभ करके कवि आनंद की भावभूमि तक पहुंचता है। चेतनता एक विलासती आनंद खंडन घंथा कामायनी। प्रिय आनंद छंद तो मेरे आत्मा के स्वर कृतज्ञता। यह छायावादी काव्य की मुख्य रचना भूमि है और अपने ऐतिहासिक काल के बाहर भी सक्रिय होने पर छायावादी कवि यहाँ पहुँच पाता है। छायावादी काव्य में शक्ति के आवाहन का एक और रूप इस युग के जागरण गीतों में मिलता है। पुनर्जागरण चेतना की बड़ी सूक्ष्म और प्रीतिकर अभिव्यक्ति इन गीतों में हुई है। मनुष्य की और प्रकृति की भी सुप्त चेतना को जगाने का उपक्रम यहाँ कवि ने सामान्यतः प्रशमित और कभी कभी ऊज की मुद्रा में किया है। छायावादी काव्य में एक बड़ी संख्या इन प्रभाती और जागरण गीतों की है, जिनमें एक ओर शक्ति और चैतन्य का आह्वान है और एक दूसरे तथा समकालीन संदर्भ में वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के संघर्ष से जुड़े हैं। प्रथम प्रभात, आँखों से अलख जगाने को, अब जागो जीवन की प्रभात, बीती विभाव रि जागरी, जागो फिर एक बार, प्रिय मुदित दीर्घ खोलो, जागा दिशा ज्ञान, जागो जीवन धन के, जागा बेसुद जाग, जागा तुझको दूर जाना, प्रथम रश्म, ज्योति भारत जैसी अनेक जागरण की कविताएं स्मरण हो आती हैं। इनमें से कुछ गीतों में व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र जागरण के भाव एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। मानवीय प्रणय और देश प्रेम का संश्लिष्ट रूप वस्तुतः छायावादी काव्य से पहले ही श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि स्वच्छंदतावादी कवियों की रचनाओं में मिलने लगता है। त्रिपाठी के खंड काव्य पथिक और स्वप्न का विधान मुख्यतः इसी वस्तु पर विकसित हुआ है। मुख्य बात यह है कि छायावादी काव्य के इस बहुत बड़े अंश में पुनर्जागरण की चेतना सीधे लहराती है। गीतों के अतिरिक्त लंबी कविताओं के खंडों में जागरण का यह स्वर गूंजता है। आंसू के बाद के हिस्से में एक पूरे का पूरा खंड प्रातःकालीन बिंबों के बीच जागरण वेला का चित्रण करता है। वह मेरे प्रेम विहस्ते जागो मेरे मधुवन में, फिर मधुर भावनाओं का कलरव हो इस जीवन में, मेरी आहों में जागो सुस्मित में सोने वाले, हे जन्म जन्म के जीवन साथी संस्कृति के दुख में, पावन प्रभात हो जावे जागो अलस के सुख में। इसी प्रकार का जागरण स्वर तुलसीदास के समापन अंश में उभरता है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणे चेतन तेजस्वी हे तब जीवन, आती भारत को ज्योतिर्धन महिमाबल। जागरण गीतों के साथ साथ छायावाद के सांद गीतों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। कवि के रचनात्मक एकांत को निपट सन्नाटे में खोलने वाले इन गीतों की अपनी विशिष्ट स्थिति है। संध्या का एकांत और अवसाद रचनाकारों के लिए यों भी बराबर आकर्षक रहा है। छायावाद के संध्या गीतों में सहज स्मरणीय है विषाद, संध्या सुंदरी, एक तारा, प्रिय साध्य गगन मेरा जीवन। महादेवी ने तो अपने एक संकलन का नाम ही रखा है सांध गीत। जागरण गान और सांध गीत के इस अवरोध में छायावाद का मूल स्वभाव कहीं अच्छी तरह समझ में आता है। छायावाद के रोमांटिक स्वरूप में एक ओर उसका विद्रोह भाव भरता है तो दूसरी ओर उसका अंतर्विरोधी चरित्र। अंतर्विरोध रोमांटिक मिजाज की एक खास पहचान कही जा सकती है। अंग्रेजी कविता में शेले का नाम जिस प्रसंग व्याय में प्रायः लिया जाता है, हिंदी में छायावादी काव्य में ही नहीं उस काल की नाटक कृतियों में भी अंतर्विरोध का यह रूप दिखाई देता है। प्रसाद के प्रसिद्ध चरित्र चाणक्य को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। संस्कृत नाटकों में चाणक्य का एक हरा और निरंतर चरित्र है, कुरूप कठोर अंधविश्वासी दुर्भिसंधियों में लीन। प्रसाद के चाणक्य में भी ये सब तत्व हैं, पर उसके चरित्र का सार्वजनिक पक्ष है। उसके चरित्र का एक वैयक्तिक पक्ष भी है, जहाँ उसके मन में बाल सहचरी सुवासिनी के प्रति गहरा प्रणय भाव है। यह जरूर है कि सार्वजनिक पक्ष के हित में वह अंततः व्यक्तिगत आवेगों का शमन कर लेता है। स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त ऐसे ही अंतर्विरोध की भावभूमि में वीर परंतु अनुत्साही नायक हैं, जबकि सामान्यतः रस सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। छायावाद की बनावट में बहुत कुछ इसी तरह प्रातःकालीन जागरण और सांध्यकालीन अवसाद का अंतर्विरोध दृष्टव्य है, जहां अंततः विजय शक्ति और जागरण की होती है। कुल मिलाकर वहां लंबी और छोटी कविताओं और गीतों की बंदिश में विरह और प्रेम और आनंद की विविध भावभूमियों में सर्वत्र एक ज्योति और जागरण की चेतना स्पंदित है। इस तरह अपने व्यक्तिगत प्रणय और व्यापक राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में और उनके संश्लेषण में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यहाँ शक्ति काव्य का सामान्य साधारण अर्थ राष्ट्रीय काव्य नहीं लगाना है। जिस राष्ट्रीय काव्य धारा का विवेचन पहले मैथिली शरणगुप्त के संदर्भ में किया जा चुका है, यह उसका अधिक सूक्ष्म तथा गहरा प्रभाव है। इस टिप्पणी का उद्देश्य राष्ट्रीय काव्य के महत्व को कम करना नहीं पर यह ध्यान दिलाना है कि छायावादी काव्य में राष्ट्रीय जागरण से अधिक समग्र चेतना का जागरण और आवाहन है। उसमें अंतर्निहित शक्ति के विकास का रचनात्मक उपक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय से अधिक संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण प्रधान है। राष्ट्रीय जागरण वस्तुतः सांस्कृतिक जागरण के अंग के रूप में आता है, जो पुनर्जागरण की मूल प्रक्रिया के अनुरूप है। यूं कह सकते हैं कि छायावाद की राष्ट्रीयता में आधार राजनीति की अपेक्षा संस्कृति है। राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक पुनर्जागरण का स्वरूप मूलतः संश्लिष्ट है। वह समग्र मानवीय और भारतीय व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयत्नशील है और अपने देश में पुनर्जागरण अवरुद्ध वहीं हुआ है जहां राजनीति को गलत अनुपात में महत्व मिल गया है। छायावादी कवि पर जहां अति भावुकता, सूक्ष्मता और वायवीयता के आरोप लगाए गए हैं, वहीं उनमें पलायनवाद को भी ढूंढ निकाला गया है। समीक्षा ग्रंथों में विविध वादों के अंतर्गत जहाँ रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद आदि की चर्चा होती है, वहाँ पलायनवाद का भी उल्लेख किया जाता है और अनिवार्यतः प्रसाद की एक पंक्ति का बार बार उदाहरण के रूप में प्रयोग की जाती है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। बिना इस पूरी कविता को समझे यह आरोप संपूर्ण छायावादी काव्य पर लगा दिया जाता है कि उसमें जीवन के संघर्ष से पलायन करने की वृत्ति है। हिंदी आलोचना में छायावाद को लेकर जिस गड्ढलिका का उल्लेख किया गया उसी का एक अंश यह है। इस कविता में विश्राम की मुद्रा का चित्रण है या पलायन की आकांक्षा है यह समझने का यत्न नहीं किया गया। विश्राम तो श्रम का पूरक है और पलायन कर्म, श्रम संघर्ष से भागना है। कर्म का भोग, भोग का कर्म के माध्यम से कर्म और भोग के संश्लिष्ट तथा आधुनिक संदर्भ में नई दृष्टि प्रस्तुत करने वाले कवि के लिए इससे बड़ी विडंबना की बात और क्या हो सकती है कि उसे पलायनवादी करार दिया जाए। गीता को केंद्र में रखकर गतिशील हुए पुनर्जागरण आंदोलन में निष्काम कर्म के स्थान पर कर्म भोग के संश्लेष को प्रस्तावित कर सकना प्रसाद जैसे समर्थ रचनाकार के लिए ही संभव था। गीता के मूल दृष्टि को प्रशस्त कर पाना वस्तुतः किसी भी भारतीय लेखक और विचारक के लिए स्मरणीय है। इस संदर्भ में यह सोच कर अटपटा लगता है कि बहुत से हिंदी आलोचकों ने भारतीय पुनर्जागरण में से विकसित और उसे समृद्ध भी करने वाले छायावाद को अंग्रेजी प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करना चाहा है। छायावादी कवियों के अंग्रेजी ज्ञान मात्र को यदि यहाँ ध्यान में रखा जाए तो कुछ रोचक तथ्य सामने आते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में छठवीं और आठवीं कक्षा तक पढ़े लिखे कवि थे, इंटरमीडिएट तक गए ऐसे भी हैं, एमए तथा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले भी। यदि आधुनिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाए तो जान पड़ेगा कि छायावादी कवि को अंग्रेजी ढंग की शिक्षा की उच्चता और उसके द्वारा रचित काव्य की उत्कृष्टता में उल्टा अनुपात है। छठवीं जमात तक पढ़ा शायद सूची में ऊपर होगा और डॉक्टर कवि सबसे नीचे। यूं इससे कोई सामान्य निष्कर्ष किसी भी दिशा में निकालना उचित नहीं हो सकता है कि यह सिर्फ एक संयोग भर हो, फिर भी अपने में दिलचस्प है, खास तौर से छायावाद के उदय में विदेशी प्रभाव की चर्चा के संदर्भ में।